الحمد لله وقل رب اغفر لك الله شیخ الاحوالانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نام برکات حق کر رہی ہے ایک رگ وہ بھی کی طرح خون جا رہا ہے بس اور اینجیو پلاسٹی ہونی ہے بس کبھی بھی اس کو تو ڈاکٹر منع کر رہے ہیں اللہ محفوظ کیا ہوا ہے اور چاہت کے مطابق لگے رہتے ہیں عجیب ہے کہ اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو فرمایا کہ جب کوئی آدمی کی طرف کو جاتا ہے تو دریا کی ٹھنڈک میلوں دور سے آتی ہے اور قریب ہو جائے اور اگر باغ اور چمن کی جانب جاتا ہے گلستان کی جانب تو اس کی خوشبو میلوں دور سے آتی ہے آم کو اگر چھپا ملے تو جو پکا ہوا آم ہوتا ہے اس کی خوشبو خود بتاتی ہے اگر کباب رکھا ہوا ہے چھپا ملے تو دور سے خوشبو آتی ہے جہاں پر ایک بریانی کی دکان ہو اس کے قریب سے گزر بھی جائے تو بریانی کی خوشبو سے مست ہو جاتا ہے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جب بندہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے تو نافرمانی کے ارادے کا زیرو پوائنٹ اور نقطۂ آغاز یا اللہ تعالی کے عذاب کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے نافرمانی کا ارادہ کرتے ہی دل میں گھبراہٹ اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے گھبراہٹ نہیں ہوتی حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مل اس گناہ کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الاسم ما حاک فی صدری کا شیء گناہ وہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرتے ہیں لہذا جس بات کو انسان لوگوں کو نہ بتا سکے جس سے پہلے تو خود کھٹکتا ہے کہ سمجھ کہتا ہے یار خود ہی انسان کو ہوتا ہے کوئی بات ہے اس میں گڑبڑ ہے اور دوسری علامت یہ ہے کہ وکریہتا ان یطلع علیہ الناس اور تو اس کو پسند نہ کرے کہ لوگ تیری اس حالت پر مطلع ہو جائے لوگوں کو معلوم چل جائے یہ تھوڑا سامنے آؤ نا تھوڑا سامنے آؤ وہ حالت اور اس بات کی کسی کو خبر نہ ہو جائے علامت ہو گئی گناہ کی کوئی پوچھے گناہ کیا ہے تو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا بتا دیا دو چیزیں نمبر ایک کہ خود اس سے کھٹک ہو اور نمبر دو کہ لوگوں کو پتہ چلنے کے پر لوگوں کو پتہ چلنا اس کو پسند نہ ہو کہ جی لوگوں کو معلوم چلے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ ہے یہ گناہ کی علامت ہے کہ لوگوں کو معلوم چلنا اس کو پسند نہیں ہے یہ علامت ہے گناہ کی کہ چھپائے مثلا کوئی آدمی دل میں تقاضے ہو رہے ہیں کہ میں کسی عورت کو دیکھوں یا فلم دیکھوں تو چاہے گا کہ کسی کو پتہ نہ چلے انٹرنیٹ پر فلمیں یا پکچر ڈاؤن لوڈنگ یا اپنے موبائل کے اندر گناہوں کی بدماشیاں اگر ہوں تو اس کو نہیں چاہے گا کہ کسی کو پتہ چلے اپنے موبائل کی نگرانی کرے گا اور ٹوک کے لیے چاہے گا کہ اس کو پتا نہ چلے یہاں تک کہ بعض مرتبہ انسان اپنی طرف سے کسی کام کو اچھا سمجھتا ہے یہ اچھا کام ہے लेकिन उसको अपने शेख से भी छुपाता है, अपने उस्ताद और मुर्शिद से भी छुपाता है, तो अलामत यह है कि इसमें कुछ गड़बड़ मौजूद है। क्योंकि अगर अच्छा काम है तो शेख खुश होगा कि नहीं? एक मौलवी साहब मुझको कहने लगे इसको हटा दो। मौलवी साहब मुझको कहने लगे कि मेरा दिल बहुत चाहता है कि मैं किसी अल्लाह वाले से बैत हो जाऊं। और देखो बेटा आप इधर बैठ जाओ, इनके साथ बैठ जाओ, हाँ यहाँ बैठ जाओ, किसी अल्लाह वाले से बैत करूं, यानी अल्लाह वालों से बैत होना ये अपनी जिंदगी की तामीर है, तामीर है जिंदगी के लिए, यानी अल्लाह ताला की फरमा बरदारी इताअत और दोस्ती की तामीर के लिए ये बैत उस मुआहदे का नाम है, उस एग्रीमेंट का नाम है कि शेख के साथ मुर्शिद के साथ एक मुआहदा एग्रीमेंट कर लिया कि अल्लाह ताला की फरमा बरदारी आप मुझको सिखाएंगे और मैं उस पर अमल करूंगा, और उस अमल करने में जो रुकावट होगी उस रुकावट को दूर कर आप अपनी तदबीरों से और अपनी दुआओं से उन रुकावटों को दूर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा, आपका काम तदबीर बताना होगा, ये मकसद है। लिहाजा इसीलिए बैत किया जाता है, अपनी दीनी तरक्की, अपनी अखलाकी तरक्की, अपनी दीनी और अखलाकी तरक्की के लिए किसी अल्लाह वाले के हाथ पर हाथ रखकर तौबा करना और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की जिंदगी गुजारने के लिए लाहे अमल अल्लाह ताला की रिदा और खुशी को सीखना पूछना, ये बैत है। कोई अल्लाह वाला ऐसा नहीं गुजरा जिसने किसी अल्लाह वाले से अपनी इस्लाह न कराई। आप बड़े बड़े जितने हजरात को देख लें जिनको अल्लाह ताला ने दीन के काम की तौफीक अता फरमाई, उनको उज्र है, लगा ले टेक, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने दीन के काम की तौफीक अता फरमाई जिनके नाम आज दुनिया जानती है, हर वो ये वो लोग थे कि जिन्होंने किसी को अपना बड़ा बनाया। क्योंकि मेरे मुर्शिद मेरे शेख फरमाते हैं तो किसी को किसी अल्लाह वाले को अपना बड़ा नहीं बनाता, किसी को अपने ऊपर बड़ा नहीं रखता, अपने ऊपर निगरान और निगहबान नहीं रखता, तो इसका बड़ा शैतान और नफ्स होते हैं। यानी शैतान और नफ्स इससे अपनी मर्जी के काम कराते हैं, अपनी मर्जी के काम शैतान और नफ्स से कराते हैं और उसको नाम दीन कहते हैं। जैसे गुस्सा करेगा और उस गुस्से को कहेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गुस्सा किया, हालांकि गुस्सा करने की भी शराइत है कि वो अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के लिए हो गुस्सा करना, ये तो गुस्सा बिल्कुल बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल है। तरीके से अगर चंदा करेगा तो उस चंदे को कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चंदा किया। अब उसमें यह नहीं देखेगा, यहां तक कि चंदा करने के अंदर किसी को इस तरह तरगीब देना या तरहीब देना, तरगीब देने की तो इजाजत है, लेकिन अगर ये डराया कि नहीं दोगे तो क्यामत के दिन अल्लाह तेरी गर्दन पकड़ेगा, तो यह दुरुस्त नहीं है। इत्तला देने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इंसान जब अल्लाह वालों से ताल्लुक करता है तो उसका नतीजा ये होता है कि अपने को उसके हवाले करता है। आलिम ने एक आलिम से हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना शाह शफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया कि आपके अंदर तकब्बुर का मरज है, इंकार किया, नहीं हजरत मेरे अंदर तकब्बुर नहीं है। बाज मरतबा मरीज डॉक्टर के पास जाता है ना कि जी मुझे नजला या फला बीमारी है, तो डॉक्टर कोई और ही बीमारी बता देता, मरीज कहता ये मेरे अंदर नहीं है, डॉक्टर कहता नहीं है, मरीज इंकार करता है। और हकीकत में होती है कि मरीज की अलामात से डॉक्टर समझता है, क्योंकि फन का आदमी है। हकीमुल उम्मत समझते थे, हकीमुल उम्मत ने फरमाया कि आपके अंदर तकब्बुर का मरज है, उन्होंने इंकार किया, नहीं हजरत मेरे अंदर तकब्बुर नहीं है। اور تکبر کے مرض کے لیے سمجھ لے کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا. سوچنے کی بات ہے کتنا خطرناک مرض ہے. اور بغیر قاعدہ یہ ہے کہ عبادات کرنے سے مرض جاتا نہیں ہے. بغیر صحبتوں کے کسی اللہ والے کو اپنا رہبر اور مرشد اور اپنا بڑا بنائے بغیر یہ چیز تکبر کا مرض جاتا نہیں ہے، بہت خطرناک ہے. اچھے اچھے لوگوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے. یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا کہ تکبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہوا آخر ما یخرج، یہ وہ سب سے آخر میں جو مرض، ہوا آخر ما یخرج من رأس الصدیقین، کہ جو اولیاء صدیقین کی اندر سے جو سب سے آخر میں مرض جاتا ہے. آخر ما یخرج من رأس الصدیقین، صدیقین اولیاء اللہ کا ایک طبقہ ہے، ان طبقے کے سے اندر سے جو سب سے آخر میں جاتا ہے وہ یہ تکبر کا مرض ہے. یہی وہ مرض ہے جس نے شیطان کو برباد کیا، اچھے اچھے لوگوں کو برباد کرتا. اور اس مرض کی چھلکی سے چھلکی یہ ہے کہ انسان اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، غلط ہو یا صحیح ہو، غلط بات پر اڑ جانا. صحیح بات پر اڑنا تو یہ تو نعمت ہے، لیکن غلط بات پر اڑ جانا، حق کو قبول نہ کرنا، ایسا خطرناک مرض ہے. یہ جو میاں بیوی کے جھگڑے بھی اسی وجہ سے ہیں. اور استاد شاگرد، اہل محلہ، یہاں تک کہ شہر بھر والے، اب دیکھیں نا، اب اگر مسلمان کی نظر میں یہ ہو، مہاجر یہ سوچے کہ پٹھان میرا بھائی ہے، اور پٹھان یہ سوچے کہ مہاجر میرا بھائی ہے، ارے یہاں بیٹھو نا، تو رہو. اگر مہاجر یہ سوچے کہ پٹھان میرا مسلمان بھائی ہے، وہ مہاجر نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ مسلمان میرا بھائی ہے، اور پٹھان یہ سوچے یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ وہ بولے یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، چاہے اپنی پشتوں میں بولے، جب اس کی نظر اس بات پر ہوگی کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، دونوں کی جھگڑا ہوگا، جھگڑا ہی ختم سارا. لیکن اب یہ کیا ہے کہ میں پٹھان یا مہاجر، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں افضل ہوں، اپنے کو بڑا سمجھا نا، یہی تو تکبر ہے، سارا جھگڑا ہی تو اسی وجہ سے. وہ کہہ رہے میں اچھا، وہ کہہ رہے میں اچھا، جھگڑا اس وجہ سے یہ ختم ہو جائے. اور بات یہ ہے کہ جب بھائی کا تعلق، بیٹوں کا تعلق باپ سے مضبوط ہوتا ہے نا، تو بھائی آپس میں مل کے رہتے ہیں. آپ تجربہ کریں، جن خاندانوں میں بیٹے باپ سے محبت کرتے ہیں نا، تو وہ آپس میں بھائی مل جل کر رہتے ہیں. یہ تجربے کی بات ہے. اگر جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ مسلمان کو ہی نہیں دیکھتا کہ تم مہاجر، تو پٹھان، تو فلاں، تو فلاں. وہ کہتا ہے مسلمان ہے، بس یہ لیا کہ میرا اللہ کا ہے. تکبر کا مرض ہے جو ذرا ذرا بات پر آج کل جھگڑے ہوتے ہیں. یہ سب تو یہی کہ میں نہیں مانوں، ایک آدمی غلط ہے، غلط جگہ گاڑی کھڑی کی، آپ اسے سمجھائیں، وہ نہیں مانے گا. وجہ یہی ہے، غلط کام کو غلط نہیں مانتا، وہ یہ جھگڑا ہے، یہ مرض ہے، اتنا خطرناک. یہ اسی سے تو آگ لگے گی، چھوڑوں گا نہیں. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ سے عالم سے فرمایا کہ تمہارے اندر تکبر کا مرض ہے، اور عابد کے اندر بھی ہوتا ہے، عبادت کرنے والے میں ہوتا ہے. تو میں بہت عبادت گزار ہوں، دن تہجد پڑھ لے، اشراق پڑھ لے، او جی میں تو بس، محبت نہ ہو، حج عمرہ کر کے آئے گا تو ایسا شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. جس میں چلا لگا رہا ہے تو دوسرے سے پوچھتا ہے تم نے کتنے چلے لگائے، تو بتاتے میں نے اتنے، تو کہتے دیکھو میں سینئر ہوں. یہ اسی سے آپس میں، آپ نے شیخ کے پاس کتنا زمانہ لگایا، کہ جی میرے شیخ کے پاس اتنا زمانہ لگایا. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، उनकी खिलाफत नहीं थी उस जमाने में, तो एक दफा हम लाहौर के सफर में थे तो मैंने उनसे कहा, कोई बात चली उस बात में काम नहीं कर, देखो ने कहा कि जो खलीफा होता है ना शेख का, शेख जिसको खिलाफत नामा देता है तो उसको शेख से ज्यादा मोहब्बत होती है बनिस्बत गैर खलीफा को, यानी जिसको शेख ने खिलाफत नहीं दी उससे ज्यादा जिसको खिलाफत दी उसको शेख से मोहब्बत होती है। मैंने कहा भाई ये कोई कायदा नहीं है, जरूरी नहीं है कि खलीफा ज्यादा मोहब्बत करता हो, गैर खलीफा हो सकता है ज्यादा मोहब्बत करने वाला, ऐसा मुमकिन है। इस बात पर उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, उन्होंने मुझसे अच्छा खासा ये कैसे हो सकता है, बहस की ये कैसे हो सकता है ना, ऑफिसर आदमी असल में सर का एक अपना दिमाग होता है ना, फिर गवर्नमेंट का होता उसका अपना एक दिमाग, बहुत झगड़ा किया। खैर मैं फिर खामोश हो गया। एक जमाने में वो हजरत क्या चिल्ला लगा रहे थे, मैं भी उन्हीं दोनों था, हजरत ने फिर उनको भी खिलाफत दे दी, तो बातचीत चल रही थी, बैठे हुए थे, ताल्लुक था हमारा आपस में, यानी झगड़ा वो नहीं हुआ कि बिल्कुल वो, बस मैं खामोश इख्तियार कर। तो फिर वही बात चल रही थी, मोहब्बत पर बात चल रही, मैंने क्या जनाब बताइए खलीफा को ज्यादा मोहब्बत होती है गैर खलीफा को, सवाल पूछा मैंने। अब वो खामोश सर झुका के बैठ गए, आगे तो बात अब सर झुका के बैठ गए, कहते मेरी गलती थी। दोस्तों थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया कि तुम्हारे अंदर तकब्बुर है, उस आलिम से। आलिम ने इनकार किया कि नहीं हजरत मेरे अंदर तकब्बुर नहीं है, क्यों मरीज तो हमेशा ही कहता ना मेरे अंदर ही मरज नहीं है, इसलिए कायदा है कि रायुल आलिम आलिम आलिल यानी बीमार की राय बीमार होती है, जो बीमार की राय है वो भी बीमार होती है। बीमार आगे आ जाओ ना, शाबाश का मजा कुछ और है ना, तो बीमार की राय भी बीमार होती है, सेहतमंद की राय भी सेहतमंद होती है, लेकिन मरीज की राय का क्या एतबार है, मरीज तो यही बोलेगा, कभी मरीज तो अपने मरज का कभी इकरार नहीं करता। उन्होंने कहा नहीं नहीं हजरत मेरे अंदर तकब्बुर नहीं है। हजरत खामोश अगले दिन आए हकीम उम्मत की खिदमत में आकर अरज किया, थे तालिब सच्चे थे सादिक थे तलब वाले सच्चे आदमी थे, लगा एहसास हो गया कि मुझसे गलती हुई, इसलिए अदब भी है कि जब बड़े कोई बात कहे तो उसका इनकार ना करें, क्योंकि हो सकता है हमें पता ना चले। अब देखिए ना, एक आदमी मुझे कह रहा है, अब मैं अपने चेहरे को तो नहीं देख रहा, एक आदमी सामने वाला मुझे कह रहा है और कहने वाला सच्चा आदमी है, नेक आदमी है, अल्लाह वाला आदमी है, वो कह रहा है कि तुम्हारे चेहरे पे कालक लगी हुई है, मैं कह रहा हूं नहीं लगी हुई, तो मैं झगड़ूंगा तो मेरा झगड़ा करना हमारा था ना। अरे भाई वो कहने वाला कह रहा है कि जनाब तुम्हारे चेहरे पर कालक लगी हुई है, मैं देख सकता हूं क्या, नहीं चलता। इंसान जो हरकत करता है ना उसको पता नहीं चलता, जैसे हम लोग बदनजरी करते ना तो जाते जाते टेढ़ी निगाह करके गोशाई चश्म समझते हैं, यानी आंखों के किनारे से ऐसे करके देखना, क्यों बदनजरी करने वाला मुख्तलिफ डिजाइन बनाता ना, नए नए स्टाइल बनाता, और समझता है क्या, और उस पर से कमाल ये कि समझता है कि मुझे किसी ने देखा नहीं है। ये तमाशे नजर आते ना गली में, जलने वाला तस्वीर हाथ में नहीं है वो जा रहा है और ऐसे करके यूं जल्दी से यूं देख लेता, और उस पर से कमाल ये कि अपने को समझता है कि मुझे किसी ने नहीं देखा, क्यों बताइए सब देख रहे होते कि नहीं, की तरफ से बहुत होशियार बनता है और सबको पता होता है कि जनाब क्या हरकत कर रहे हैं सूफी साहब, तो गोया कि उसको सहजार नहीं ना, एहसास नहीं कि मैं क्या हरकत कर रहा हूं, मरीज है ना इसलिए मरीज को पता नहीं चलता मैं क्या हरकत कर रहा हूं, जैसे मरीज है उसको अब उसको बीमारी है पेशाब निकल जाता उसको पता ही नहीं चलता, उसको दस्त हो जाता उसको पता ही नहीं चलता, इसकी राय का एतबार नहीं। खैर सच्चे थे मुखलिस थे, अगले दिन आकर हजरत से अर्ज किया मेरी गलती है, इसलिए अर्ज किया जब बड़े कोई बात बोले तो उसका इनकार न करें, वो कुछ और नजर से देख रहे होते हैं। अर्ज किया कि हजरत مجھے معاف فرما دیجئے، میری غلطی ہے، واقعی میرے اندر تکبر ہے، جلدی اقرار کر لیا نا. اگلے دن تو حضرت فرمایا ماشاءاللہ، کہا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت علاج تجویز فرما دیجئے، تکبر کا علاج دیکھیے. ان علاجوں میں سے ایک علاج یہ بھی، تکبر کا مرض یہ ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھنا، وی آئی پی، لگا چال سے بھی پتا چلتا ہے، جس کے اندر مرض ہوتا ہے نا اس کی چال سے بھی پتا چلتا ہے، اس ہاتھ سے، اس کے بیٹھنے اٹھنے سے، ہر چیز سے جھلکتا ہے. اور جس کے اندر توازو ہوتی ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے. اور بعض لوگ تکبر توازو کی صورت میں بھی کرتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، بوجھ کے ایسی بنائی کہ پکا پتا چلتا ہے کہ دوغلا ہے، یہ شکل ایسے بنائیں گے. یہ بھی تکبر ہے کہ اپنے کو گویا کہ کہلوانا چاہ رہے کہ میں متواضع ہوں اور حقیقت میں متکبر ہے. اور توازو وہ چیز ہی ایسی، وہ دل کا مرکز ہے سب، کہ دل میں اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے لباس بھی شاندار، اس کا رکھ رکھاؤ بھی، صفائی ستھرائی ایک ایک چیز میں، وہ بھی سب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تکبر نہیں فرمایا کہ ایک آدمی اچھی گاڑی رکھتا ہے، اچھا لباس ہے اور سب ہے، لیکن اس کو تکبر نہیں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سیرس کے کہا تھا علاج فرما دیجئے، تو ایک علاج میں کہہ رہا تھا ایک یہ بھی ہے. ذرا تصور کرے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے میرے اندر تکبر نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، آپ کو تکلیف ہے تو ٹیک لگا لے. اچھا کوئی حرج نہیں. ایک آدمی اگر سمجھتا ہے نا میرے اندر تکبر نہیں ہے، تو ایک کام کرے، جمعے کی نماز کے بعد آج ہی نماز ختم ہونے کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ بھائیو میں بہت گنہگار آدمی ہوں، میرے لیے دعا کرے. سب یہی جملہ کہہ دیں کھڑے ہو کر، زور سے اعلان کرے، کیونکہ ہمارے چندے کے اعلان کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، نہ کوئی اور مانگنے کی اجازت ہے، کیوں جناب، اس کی اجازت ہے. لیکن صرف کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ بھائی آپ سب حضرات میرے لیے دعا کریں، میں بہت گنہگار ہوں. ذرا اسی اعلان کے تصور سے نماز کے بعد ذرا تصور کر لینا، سلام پھیر کر، کہ مجھے اعلان کرنا ہے کہ میں بہت گنہگار آدمی ہوں، آپ نمازی بھائی میرے لیے دعا کریں. پھر دیکھیے دل کی کیسی نانی مرتی ہے، پھر پتا چلے گا کہ ہمارا کیا حال ہے. اقرار آسان تھوڑی ہوتا ہے، نانی مرتی ہے. تو انہوں نے خیر اقرار کیا، حضرت نے ان کا علاج، عالم ہے وہ، علاج کیا. حضرت نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ جو خانقاہ کے باہر حصہ ہے وہ آپ جھاڑو لگائے کر. اب خود بتاتے ہیں کہ ایسا عالم ہوا کہ دانتوں تلے پسینے آ گئے. ایک مولوی صاحب عالم، اور یقین جانے کوئی اس میں غلو نہیں ہے، آج کل کے علم پڑھنے والے اور پہلے زمانے کے علم پڑھنے والوں میں بہت فرق تھا. آج کل تو جہاں گوشت نہ ملے نا اس مدرسے میں کوئی جاتا بھی نہیں ہے، گوشت کا ناغا ہو جائے سمجھ لو ہڑتال ہے. اور وہ لوگ جس طرح محنت کر کے پڑھتے تھے، اور پھر جو ان کی علمی صلاحیت، ہماری اور ان لوگوں کی علمی صلاحیت میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، یقین جانے. تو حضرت نے ان سے فرمایا، اب شیخ کی بات تھی، جھاڑو لگایا اب دل پر جبر کر کے، پسینے چھوٹ گئے، حالت خراب ہو گئی. لیکن خیر حکم تھا ہفتہ دس دن یہ کام کیا. اللہ والوں کو دیکھیے، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 10-15 دن گزرے، اب ان سے فرمایا کہ اب آپ کا کام، کہ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا. فرمایا اچھا ماشاءاللہ، اب آپ کا کام یہ کہ اب وضو خانے کی نالیاں صاف کریں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں وضو خانے کی نالی صاف کروں گا، لیکن مجھے جھاڑو دینے کی اجازت دے دیجئے، وہ بھی میں کروں گا. فرمایا نہیں، اب جھاڑو دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس میں تو اب نفس کو مزہ آنے لگا. प्रधाना झाड़ू दे रहे ना, अब तो नफ्स को मजा आने लगा कि जी क्या मजा आने लगा। नफ्स कह रहा है देखो तुम शेख के हुक्म पर शेख की खानगा के झाड़ू लगा रहे हो, अब तो नफ्स को मजा आने लगा। वाह वाह जी खिदमत कर रहे, यही भी तो एक होता ना, खिदमत करने वालों को भी एक नशा होता है। ओ जी हम खिदमत कर रहे हैं, ये भी एक नशा होता है। असल में तो वो नशा ही तोड़ना था, देखना क्या नजर है। सुभान अल्लाह, फरमाया नहीं अब आपको झाड़ू देने की इजाजत नहीं है, अब आप खट्टर वजू खाने की नाली साफ करें, क्योंकि नफ्स को नई चीज लेकर आए, पुरानी चीज को वो पुरानी चीज के अंदर वो कुछ ना कुछ बेहतरी ले आता है और उसके अंदर कोई ना कोई चीज बात बना लेता है, अब मजा आने लगा। दादा खुद कह रहे हैं नहीं मैं झाड़ू भी लगाऊंगा अब मुझे, फरमाया नहीं वो तो आदत बन गई। और यही तो करना है, नफ्स को आदत वाला काम नहीं करने देना। ऐसे होता है इलाज, ये है तकब्बुर जनाब, और ये होता है ऐसे इलाज। सामने आओ ना यार, ठीक है भी जाना होता है इलाज। आरज ये कर रहा था कि इंसान गुनाह की अलामत क्या है, सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मल इत गुनाह क्या है, फरमाया दो अलामत, अल इस्मु मा हाका फी सदरी का शय, गुनाह वो ही है जो तेरे दिल में खटक पैदा करता है, और वह करीहता अय्यत तलिया अलैहि नास, कि तू इस बात को पसंद ना करे कि लोगों को इसके बारे में मालूम, तो ये इसका मतलब ये गुनाह है। ये दो अलामत हो गए ना, नंबर एक दिल में खटक हो जाएगी यार ये अच्छा काम नहीं, खुद इंसान उसको बुरा समझता है। लगा कितने ऐसे अच्छे काम होते हैं, कितने ऐसे अच्छे काम होते हैं लेकिन इंसान के दिल में खटक होती है। और सबसे बड़ी बात यही, सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान अपने रहबर को अपने शेख को जो बात न बता सके वो गड़बड़ है। इसी पर मैं वाकया सुनाता कि मौलवी साहब ने मुझसे कहा कि मेरा दिल चाहता है मैं किसी अल्लाह वाले से बैत हो जाऊं, उससे ताल्लुक करूं, अपनी इसलाह कराऊं, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करूं। और उसकी इब्तदा कैसे होती है कि इंसान शेख के हाथ पर सबसे पहले तौबा करता है तमाम गुनाहों से, ये इब्तदा हो रही है, पुरानी रील साफ की जा रही है। और इस्तिकामत के हुसूल के लिए शेख की सोहबत और उससे जिक्र और मामूलात पूछता है, शेख की सोहबत का एहतमाम करता है, यानी उसके पास बैठना, उसके पास आना जाना, उसकी मजालिस में शिरकत करना, उसके पास वक्त लगाना अपनी इस्लाह के लिए, इस्तकामत हासिल हो जाए, गुनाह छोड़कर फर्माबरदार बनता है, अखलाकी बुलंदी हासिल हो जाए, ताल्लुक मा अल्लाह हासिल हो जाए। तो उन्होंने कहा मेरा दिल चाहता है लेकिन मैं बता रहा था कि नफ्स कैसे करता है, उन्होंने कहा लेकिन मैं दीन का काम करता हूं, मुझे डर ये लगता है। अब देखो शैतान और नफ्स ने कैसे डराया अल्लाह वालों से रोकने के लिए, उन्होंने कहा मुझे डर ये लगता है कि अगर मैंने उनसे ताल्लुक किया तो मेरा दीन का काम बंद ना हो जाए। मैंने कहा कौन बंद करेगा, कहा वो बंद कर देंगे। अल्लाह ताला ने उसी वक्त मदद फरमाई, जवाब बताओ फरमाया कि फरमाए अर्ज किया मैंने उनसे कि मौलवी साहब बात यह है दो सूरतें हैं, आप जो दीन का काम कर रहे हैं या तो वाकई वो दीन का काम है या दीन के काम की सूरत तो है लेकिन हकीकत में दीन का काम नहीं है। दीन के काम के नाम पर तो बहुत सारे लोग दीन का काम कर रहे हैं लेकिन हर आदमी तो दीन का काम नहीं कर रहा ना। एक आदमी कह रहा है कि मैं अल्लाह के लिए तकरीर कर रहा हूं लेकिन अल्लाह जानते कि क्या उसके अल्लाह ताला क्या क्या लिखा जा रहा, उसकी नीयत कुछ और हो, नीयत जैसे ही हो कि भाई लोग जरा मरूब हो जाएंगे, लोगों में हमारी इज्जत होगी। अब मुकर्रर की नीयत तो नहीं जानता ना कोई, और उस मुकर्रर की तकरीर से लोगों को फायदा भी हो रहा बयान से। उसकी मिसाल ऐसे जैसे सूप बेचने वाला सूप बेच रहा है, सबको सूप पिला रहा है, सब सूप पी के तगड़े हो रहे और वो बेचने वाला पीता नहीं है, क्या है कि वो सेहत नहीं बन रही उसकी। तो पीने वाले तगड़े हो रहे हैं और पिलाने वाला कमजोर। लिहाजा ऐसा दीन का काम करने वाला हो सकता है कि उसकी नीयत में खराबी की वजह से, इखलास ना होने की वजह से बयान सुनने वाले अल्लाह वाले बन जाए, नेक आगे बढ़ जाए और बयान करने वाला महरूम हो जाए। ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए दीन की सूरत एक है ना, दीन की सूरत और एक है दीन का काम। इसलिए तो माहिरीन की राय चाहिए, वो बताएंगे सही दीन का काम कैसा है। तो अब वो दीन का काम की दो सूरतें, या तो वाकई वो दीन का काम है या दीन के नाम पर, दीन का नाम है काम नहीं है। तो मदरसतुल बनात खोला कि जी हम बच्चियों को तालीम देंगे, अच्छी बात है मदरसतुल बनात खोलना, लेकिन मोहतमिम साहब लड़कियों में घुसे चले जा रहे कि बच्चियों की निगरानी करनी और पर्दा नहीं करते। हम मोहतमिम साहब अगर ये कहें कि उस्ताद बाप के बराबर होता है, तो ये फिर बापों को क्या हुआ कि अपनी शागिर्दाओं से शादियां भी करते? ऐसे तो बड़े वाकयात है जरा। पर्दा तो पर्दा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर क्या हो सकता था? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से पर्दा फरमाते थे, आज कौन मौलवी, कौन अल्लाह वाला अपने को कहेगा कि हमें कोई जरूरत नहीं है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा रहे हैं। आप औरतों से पर्दा फरमाते थे, तो फिर कौन पीर, कौन मौलवी है जो ये कहे कि नहीं, हम तो बाप की जगह है। अरे मियां, ये जो दिल का हाल अगर पता चल जाए ना, दिल की हाल जो है स्क्रीन बन जाए माथे पर, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं यहाँ एक स्क्रीन बनी हुई हो, टीवी स्क्रीन, और जो दिल में जो ख्याल पका रहे हैं वो सब स्क्रीन में आ जाए। जब लोग कहेंगे लो जी बाजार से फिल्में लाने की जरूरत ही नहीं, इसे देख लिया करेंगे। हर एक जो अपने दिल में ख्याल पकाता है अगर वो मान लो तो स्क्रीन पर आ जाए, क्या हाल होगा, कितनी अल्लाह ताला की सत्तारी है। इसलिए ये सब कहने की बातें हैं। कल्ब में, दिल में जो नफ्स ख्यालात पकाता है, वल्ला हम लोग अपनी जबान पर नहीं ला सकते। सही कह रहे होंगे नहीं? हर आदमी जानता है ना इसको, तो हर आदमी का मामला है ये तो। लेकिन जो ख्याल आ रहा है उस पर कोई गुनाह नहीं है। खुद जानबूझकर ख्याल पकाएगा उस पर पकड़ होगी, और अगर ख्याल आ गया, अब उसने कहा आ तो गया, चलो इसको चाय भी पिला दे, गर्मी का मौसम है सर, सत्तू ही खिला दे इसको, गर्मी का दुश्मन सत्तू, पंजाब का सत्तू, वाटर पंप का मशहूर तरबूज के शरबत ही पिला दे। तो आमों की बहार आई हुई है, मिल्क शेक पिला दे, मैंगो शेक एंड मिल्क शेक। ख्याल यानी गोया ख्याल आया, उसने बिठा लिया ख्याल को, अब उसको मैं मजबूर हो गया, तो ये भी गुनाह है। सिर्फ आने पर गुनाह नहीं है, लाने पर गुनाह है, या आ जाए तो उसे जमाना और बिठाने पर गुनाह है। ये मसला समझ में आ गया ना? इसलिए याद रखना, जिस चीज को शरीयत ने फरमा दिया उसमें आफियत है। तो मैंने कहा कि दीन के काम की दो बातें, या तो दीन का काम है या दीन का नाम तो है काम नहीं है। मैंने कहा कि जिस शेख से आप राब्ता करेंगे, या तो वो अल्लाह वाला होगा या अल्लाह वाला नहीं होगा, यानी सच्चा रहबर होगा या सच्चा रहबर नहीं होगा। जरा ये मंतकियाना फलसफियाना बात है, वो मौलवी साहब इधर मंतकी है। इनके काम की दो सूरतें हुई, या काम होगा या नहीं होगा, और उस अल्लाह वाले की भी दो सूरतें हुई, अल्लाह वाला होगा या ना होगा। तो मैंने कहा मौलवी साहब एक बात बताओ, अगर वो अल्लाह वाला होगा दीन के काम को मना करेगा? क्यों जनाब? अगर कोई अल्लाह वाला होगा और कोई आदमी दीन का काम कर रहा उसको मना करेगा? लिहाजा अगर वो अल्लाह वाला है और किसी काम से मना कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वाकई उसमें कोई गड़बड़ मौजूद है जो नजर नहीं आ रही। जैसे बाज़ लोगों को यह बुरा लगता है कि जी मदरसतुल बनात अगर हमने खोला, अगर हम निगरानी के लिए जाते तो क्या है, ये बहुत बुरा लगता है उनको। सभी नाफरमानी अलग है, लेकिन बहुत बुरा लगता है। देखो आप बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ, उनको आगे बिठा दो, आइए आइए, शाबाश, बुरा लगता है। जैसे लोगों को ये भी बुरा लगता है कि ये क्यों कहे कि मुझे साफ करो, बहुत बुरा लगता है, जान जाती है भाई। देखो हर आदमी क्या चाहता है, मुसलमान का एक शौक है, जौक है कि सुन्नत पर अमल करना है, तो ये भी तो सुन्नत है, तो इसको साफ कराने में क्या है। लेकिन ये जो नफ्स है ना, ये नफ्स कहता है नहीं नहीं भाई, ओफो तुम तो सारे खेल बिगड़ जाएगा तुम्हारा, तुम्हें तो लोग जलील समझेंगे कि लोग मुझे साफ कर दी, तुम्हारी मर्दानगी गई। मुसलमान हुआ, साहब के पास आया, मौलवी साहब क्या करूं अब मैं, कहा खतने करवाओ। उसने कहा अच्छा चलो, बड़ी मुश्किल से करवा लिया। अब उसके बाद जो है वो अपने मौलवी साहब के पास रहा नहीं, चला गया अपने सिखों में। अब लोगों ने ताना देना शुरू किया, मुझे शर्म नहीं आती, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया और वो ताने ही वो, बड़ा परेशान हुआ। फिर आया मौलवी साहब के पास, उन्होंने कहा मौलवी साहब मैं बस बेजार आया, मुझे इस्लाम से निकलना है, बस मैं नहीं, तरीका बताओ क्या करना होगा। तो मौलवी साहब ने फरमाया कि भाई देखो, जो इस्लाम से फिर रहा है तो इस्लाम से फिरने वाले की यानी मुर्तद हो जाने की सजा कत्ल है, तुम्हारी गर्दन उड़ाई जाएगी, क्योंकि ईमान ऐसी चीज है जब एक दफा दाखिल हो जाती है फिर दिल से निकलता नहीं है। बदल जी है भी कोई गल है, दाखिल हो तो नीचे से कटवाओ और बाहर निकलो तो ऊपर से कटवाओ। पुलिस साहब ने कहा कि तू मेरे पास रह जा, यहां रह, तरबियत होगी। लादा वो रहा, फिर माशाल्लाह पक्का मुसलमान बन गया। असल में जब इंसान गैरों में जाता है ना तो गैरों में असर होता है उसका, गैर की बात सुनता है। तो लहजा इंसान को जब कोई बात अपनी तबीयत के खिलाफ सुनता है ना, खुसूसन जिस आदमी को जो मर्ज हो, जब उसी मर्ज के बारे में बात की जाना हो तो उसको घबराहट शुरू हो जाती है, कह लो जी पकड़े गए। तो लड़कों को देखना हराम और गुनाह है, सर से लेकर पांव तक, ला यजूज़ नज़र मिन फ़र्दि लाक़तिन, सर से लेकर पांव तक देखना उनको जायज नहीं है, ऐसे लड़के जिनकी दाढ़ी मूछ ना आई हो। इसलिए हमारे बुजुर्गों का तरीका, इमाम अबू हनीफा, हम लोग क्या है हनफी है ना भाई, हम लोग हनफी है ना अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने सौतेले बेटे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के मुज्तहिद है, इमाम साहब के मायानाज शागिर्द है, यानी पूरी फिका हनफी उनके दो शागिर्दों के जरिए आगे है, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। अब इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इनके सौतेले बेटे भी थे, लेकिन अल्लामा शामी फरमाते काना सबीहन, खूबसूरत बहुत थे। तो इमाम साहब क्या करते थे, आप तकवा देखिए कि इमाम साहब उनको अपने दर्स में पीछे बिठाते थे। तो कुरून का जमाना, इमाम साहब ताबाई हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, और ताबाई वो होता है जिसने साहबी की ज़ियारत की हो, वो ताबाई होता है। और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, बेहतरीन जमाना मेरा और उसके बाद वाला, यानी खैरुल कुरून का जमाना, जमाना कौन सा, खैर का, लेकिन और तकवा का क्या आलम। लेकिन आलम ये अपने नस पर जर्रा बराबर एतमाद रहे, अपने दर्स में पीछे बिठाते थे, ये आलम। मैंने अपने शेख को देखा सारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत के बयान में कोई लड़का सामने नहीं होता था, अब जोश होता ना, जोश में आगे सामने बैठ जाते हैं, हजरत उनसे फरमाते हैं कि बेटा साइड पे आ जाओ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि हजरत की इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बल्कि लड़कों को खुद चाहिए वो खुद साइड पर आकर बैठ जाए, सामने बड़े लोग बैठे बड़ी उम्र वाले। तो ऐसे लड़कों को देखना सर से लेकर पांव तक जायज नहीं है, क्योंकि इंसान देखता है फिर उनको मिरिंडा पिलाता है, लॉलीपॉप चूसने को देता है, अंडा खिलाता है, शाबान का हलवा खिलाएगा, इस तरह बात आगे बढ़ेगी। यहां तक कि जिन लोगों ने एहतियात नहीं की, मैं मस्जिद में कसम खाकर कहता हूं, एहतियात ना करने की वजह से मुंह काला किया, लोगों को ये मजमून बुरा लगता है कि जी ये मजमून क्यों पेश करते हो। लगने की वजह क्या होती है? जिस आदमी जो आदमी इसमें मुतला नहीं है उसको क्या बुरा लग रहा भाई? जिस आदमी मर्द नहीं है उसको क्या बुरा लग रहा? अब रही बात के, कोई ये कह सकता है कि इस मजमून को बयान करने की क्या जरूरत है? तो इसका एक जवाब तो ये है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस मजमून को बयान फरमाया, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, चार जगह नहीं, पांच जगह नहीं, आठ नौ मरतबा पूरे कुरान पाक में इसका जिक्र है। तो अल्लाह ताला ने क्यों जिक्र किया कुरान पाक? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जब कि उनकी कौम लड़कों के साथ बदफेली करती थी बात, और दूसरी बात यह कि बात यह है कि जिस आदमी को ये मर्ज नहीं है उसको नाराज होने की क्या जरूरत है? एक साहब ने मुझसे कहा, मैंने कहा सच बताओ ये मर्ज है कि नहीं लोगों में, ये काम हो रहा है नहीं हो रहा? कहे होता है। तो मैंने कहा फिर अजीब बात यह है, जो लोग ये बदफेली के काम कर रहे हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता, और जो आदमी इसकी शनाख्त, इसका बुरा होना और इसके इस फेल का घिनौनापन को और गलासत को पेश करे उसको कहा जाए कि ये बात ना करो। कितनी अजीब बात, जो गलत काम करे उसको न रोको, जो अच्छा काम करे उसको मना करो। अकबर इलाहाबादी ने यही कहा कि रकीबों ने रपट लिखाई जा जाके थाने में, रकीबों ने रपट लिखाई जा जाके थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नफ्स है ना, जिस चीज से खटक होती है कि जी ये काम कुछ गड़बड़ है, इंसान जब गलत काम करता है ना तो उसको जरूर खटक होती है, कहता है यार कोई बात है इसमें, कुछ ना कुछ दाल में काला है, ये अलामत है कि गुनाह है। नंबर दो, अपनी हालत को किसी से बताएगा नहीं, जैसे इंसान जो दिल में तकाजे ख्यालात पकाता है किसी को बता सकता है? नफ्स कहे कि फलां से आजकल ये जाता है, अच्छा चलो मैं अपने इमाम साहब से मशवरा करता हूँ, चलो मैं अपने शेख से मशवरा करता हूँ, कहेगा नहीं 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 रहने दो बस, कहेगा नहीं जरूरत नहीं है, गड़बड़ेगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इंसान जब गुनाह करता है तो उस पहले गुनाह का असर ये होता है कि दिल में घबराहट शुरू हो जाती है। गुनाह तो दूर की चीज, गुनाह के तस्वुर से घबराहट होती है। लेकिन बाद लोग, मैं अर्ज कर रहा था कि बाद ये कहते हैं कि हमें गुनाह से कुछ नहीं होता, हम गुनाह करते हैं हमें तो कुछ भी नहीं होता। तो उसकी एक मिसाल ऐसी कि जब इंसान जिस इंसान ने सिगरेट ना पियो, जिस इंसान ने कभी नस्वार ना खाया हो, जिसने कभी पत्ती वाला पान ना खाया हो, उसको आप पहली दफा एक नस्वार की चुंडी दे दें, क्या हाल होगा उसका? सातों जमीन, सातों आसमान एक ही परवाज में, एक ही चुंडी में पार करेगा नहीं करेगा? जिसने कभी सिगरेट ना पियो तो कैसे हालत खराब हो जाएगी उसकी? जो आदमी आदी है वो तो सिगरेट पीने वाले तो चेन स्मोकिंग करते, चेन स्मोकिंग समझते ना, सिगरेट खत्म होने लगे दूसरी सिगरेट उसी से जला ली, माचिस का इस्तेमाल ही नहीं करते, ये चेन स्मोकिंग है। ऐसा भी है और उनको कुछ भी नहीं होता, बल्कि सिगरेट न पीने से उन्हें कुछ होता है और नस्वार न खाने से उन्हें कुछ होता है। कि बैनुल अक्वामी तौर पर सिगरेट पीना, नस्वार खाना ये अच्छी चीज नहीं है, बैनुल अक्वामी ये उसूल है, लेकिन अजीब बात है कि इनको उसके बगैर कुछ नहीं होता। यानी एक आदमी, एक साहब ने मुझसे कहा कि मैं नजर बचाता हूं तीन चार दिन अच्छा रहता है, तीन चार दिन के बाद इतना शदीद तकाजा होता है कि बस किसी औरत को देखूं, फिर जब मैं देखता हूं तब मुझे सुकून आता है। मैंने कहा अफसोस, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे भंगी है ना, भंगी पखाने के बगैर रह नहीं सकता, जब तक वो पखाना ना सूंघे उसे मजा नहीं आता। लगा कोई गटर उबलता हुआ देखता ना, खुशी के मारे उसका बुरा हाल होता है, कहाँ आएंगे मेरे पास ही आएंगे अब, उबलते हुए गटर को देखकर। लगा जिस वक्त भंगी को बुलाया जाता ना, उसकी चाल ही कुछ और होती है, तो मुछों को ताव देते हुए चौधरी साहब बन के आता है, तो उसी तरह से, लेकिन इसको कोई अच्छा नहीं बोलेगा। तो गुनाह मेरे दोस्तों, गुनाह करना ये तो बहुत बुरी चीज थी, लेकिन इसका पता ही चला इसका मिजाज बिगड़ गया, मिजाज खराब है। इसकी मिसालें को यूं समझिए, एक और मिसाल। अब हम लोग बिजली में रहते हैं, बिजली जाती है तो हमारा हाल बुरा हो जाता है। ऐसी जगह चले गए गांव में जहां बिजली है ही नहीं, ये भी मिसाल मेरे शेख और मुर्शिद की है, जहां पर बिजली है ही नहीं। अब दिन तो इधर उधर गुजर गया, अब रात का वक्त आया, उन्होंने कहा भाई पंखा चलाओ। अजी पंखा तो नहीं है। कहा चलो लाइट तो चलाओ, वो लाइट भी नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं है? कहे यहां तो हमारे यहां बिजली नहीं है। और वो बिजली जो बिजली में रहते हो कहते तुम लोग जिंदगी कैसे गुजारते हो? तो वो कहेगा तुम लोग अजीब आदमी हो भाई, बगैर पंखे के बगैर लाइट के भी तो जिंदगी गुजरती है, ऐसा है कि नहीं है? हमारे बाप दादाओं ने गुजारी है, नहीं गुजारी? और गुजरती है, गुजरी थी उनकी। लेकिन अब बिजली, अब जिसके यहां बिजली नहीं है वो कहते लो ये क्या बात है। तो पता ही चला उसने अभी बिजली की नेमत को देखा नहीं है। अगर बिजली की नेमत देख लेता तब वो भी ऐसे ही परेशान होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये कहते हैं कि गुनाहों से हमें कुछ नहीं होता, दर हकीकत इन्होंने अभी अल्लाह ताला की फरमा बरदारी की जिंदगी गुजार के देखी नहीं है कि अल्लाह ताला की फरमा बरदारी के अंदर लज्जत क्या है, अल्लाह ताला की फरमा बरदारी के अंदर सुकून क्या है, अल्लाह ताला की फरमा बरदारी के अंदर क्या चैन और आराम है, अभी वो देखा नहीं है। जिस दिन ये उस चैन और आराम को देख लेंगे वल्लाह, फिर गुनाह तो करना दूर की बात, गुनाह का तसव्वुर भी मौत से बढ़कर मालूम होगा। हक तसव्वुर भी। इसमें मेरे मुर्शिद मेरे शेख ने फरमाया कि जब इंसान गुनाह का इरादा करता है तो गुनाह के इरादे का जीरो पॉइंट और नुक्ता आगाज अल्लाह ताला के आजाब का नुक्ता आगाज होता है, दिल में परेशानी शुरू हो जाती है। और अल्लाह ताला की फरमा बरदारी का जीरो पॉइंट और नुक्ता आगाज अल्लाह ताला की रहमतों का नुक्ता आगाज होता है। लिहाजा आप देखिए इसकी एक मिसाल और आसान, जो लोग नमाज पढ़ने वाले हैं जब तक नमाज नहीं पढ़ते दिल में कैसी परेशानी रहती है, जैसे जमात की नमाज किसी वजह से कभी कभी निकल जाती है, माजूर है, उज़्र की वजह से, लेकिन जैसे ही वो नमाज पढ़ लेता है तो नमाज पढ़ते ही दिल को कैसा एक सुकून, एक ठंडक और इत्मीनान मिलता है। तय क्या है कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी इसकी हयात और सांस है, बस ये चीज पैदा हो जाए। और ये चीज पैदा होती है सोहबत अहलुल्लाह से। अल्लाह ताला ने अपने औलिया की सोहबतों में असर रखा है कि मिजाज बदलते हैं। वो जो मिजाज गुनाहों वाला मिजाज होता है वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के मिजाज से तब्दील होता है। ये चीज पैदा होती है इंसान और खुद उसको पता चलता है। लिहाजा ख्वाजा अज़ीज़ हसन मज़ज़ूब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नक्शे बुता मिटाया, नक्शे बुता मिटाया दिखाया जमाल हक, यानी मेरे दिल में जो गैरुल्लाह के इन हसीन औरतों के और लड़कों के और फिल्मों के जो चक्कर की जो गलाजत और गंदगियां और बुत मेरे दिल में घुसे हुए थे, मेरे शेर ए मेरे मुर्शिद हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने उस बुतों को मेरे दिल से निकाला और क्या अल्लाह ताला के जमाल से मेरे दिल को मुजम्मल और अल्लाह ताला के नूर से मेरे दिल को मुनव्वर फरमाया। नशे बुता मिटाया दिखाया जमाल हक, आंखों को आंखें और दिल को मेरे दिल बना दिया। अभी आंखों का इस्तेमाल क्या, गैर को देख रहे हैं, अब उस आंखों को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के ताबे कर दिया और वो दिल जो अल्लाह ताला के रहने का ठिकाना था, हाय उस दिल के अंदर गैरुल्लाह की गलाजत और गंदगियां भरी हुई है। हालांकि वो दिल अल्लाह ताला ने अपने रहने के लिए बनाया, लेकिन जिसको जिसने जिसलिए जिसके लिए अल्लाह ताला ने दिल बनाया उसको हमने दिल में बसाया नहीं और गैरुल्लाह को दिल में बसा दिया, नतीजा क्या होगा? दिल तबाह बर्बाद ना होगा, दिल भी बर्बाद होगा और उसके नतीजे में चूंकि दिल बादशाह है, दिल बादशाह है और जो बादशाह का मिजाज होता है पूरे मुल्क और सल्तनत का फिर वही मिजाज बन जाता है। लिहाजा जब दिल बादशाह, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत और ताल्लुक पैदा होगा तो उसका नतीजा होगा कि पूरे जिस्म से अल्लाह ताला की मोहब्बत के आमाल सादिर होंगे। नजर बचाना आसान, एक मुट्ठी दाढ़ी रखना भी फिर आसान हो जाएगी। जैसे बात कहते हैं ना, अरे साहब दाढ़ी तो दिल में होनी चाहिए, दाढ़ी दिल में है। तो बेशक दाढ़ी का मरकज तो दिल ही है, क्योंकि दिल में पहले वो अकीदा जमता है कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करनी है, और दाढ़ी दिल में है, जड़ वहां बनती है, फल लेकिन बाहर निकलता है, फल जो है यहां आता है। एक मिसाल और भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई कि एक सांप का बच्चा है, वो 18 बरस का हो गया लेकिन बालिग नहीं हुआ, है ना बालिग। अब वो डॉक्टर के पास ले गया कि डॉक्टर साहब देखो मेरे बच्चे को देखो, 18-20 साल का हो गया, अभी तक बालिग नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा भाई, चेकअप किया उसका, ब्लड टेस्ट किया, MRI, CT स्कैन वगैरह वगैरह, जितने लैब टेस्ट हो सकते थे वो करवा लिए उसने सब। आखिर में अपना फैसला ये लिखा कि भाई आपका जो बच्चा है, घबराने की कोई बात नहीं है, इसके अंदर का अंदरूनी निजाम, इंटरनल जो सिस्टम है, बुलूगत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छा है, बेहतरीन है, और घबराने की कोई बात नहीं, कभी भी बुलूगत बाहर आ जाएगी। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, बुलूगत को बाहर निकाल लिए, क्यों मुझे दादा बनना है, इसकी शादी करनी है, मुझे दादा बनना है, क्योंकि मुझे दादागिरी का बड़ा शौक है, दादा बनूंगा तो दादागिरी करूंगा ना। सब कहते जल्दी किस बात की, अरे भाई अंदर तो है ना, अंदर तो ठीक है, बाहर आने की क्या जरूरत है, क्या घबराते हो भाई, अंदर तो ठीक है, अंदर का निजाम बिल्कुल सही काम कर रहा है, मानेगा? कहेगा नहीं, बाहर भी होना चाहिए। तो बेशक दाढ़ी दिल में तो रखी, लेकिन अल्लाह ताला ने दाढ़ी को सिर्फ दिल की हद तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसको बाहर भी निकलवाने का हुक्म दिया। लिहाजा दाढ़ी का चेहरे पर बाहर निकलना इस बात की अलामत है कि अंदर भी जड़े ठीक है। अंदर जब गड़बड़ होगी तो बाहर भी गड़बड़ होगी, और अंदर जब दुरुस्त हो जाएगा तो खुद ब खुद सारा निजाम ठीक हो जाएगा और दाढ़ी बाहर आ जाएगी। लेकिन आरज यही है कि दाढ़ी एक मुट्ठी है, एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखना, मेरे दोस्तों ये दाढ़ी नाबालिग दाढ़ी है, और मेरे मुर्शिद फरमाया करते हैं नाबालिग की शादी नहीं होती, लिहाजा इसकी रूहानी शादी नहीं होगी, यानी अल्लाह ताला की इनायतों मेहरबानियों से ये शख्स महरूम रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बंदा अल्लाह ताला की फरमाबरदारी, ख्वाजा साहब की बात सुना रहा था कि क्या फरमाया कि नक्शे बुता मिटाया, दिखाया जमाल है, आंखों को आंखें, दिल को मेरे दिल बना दिया। ये दिल बनता है दिल वालों की सोहबत से, अहले दिल की सोहबत से। मेरे मुर्शिद से एक साहब ने सवाल किया कि हजरत ये क्या बात है कि दिल तो सारी दुनिया के पास है, मक्खी के पास भी दिल है। जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है तो वो जानते हैं कि मक्खी का भी दिल है, मेंढक का भी दिल होता है, और जितने जानवर है सबका दिल होता है। लगभग जब कटाकट खाने जाते हैं तो उसमें दिल भी डलवाते हैं, दिल डलवाए, गुर्दे डलवाए, मगज डलवाए, लेकिन खुदा के लिए एक चीज न डलवाए ना, वो बकरे की जो खास पावर वाली चीज होती है ना, पावर को मल्टीप्लाई करती है, वो लटकती हुई चीज, उसको नहीं डलवाना चाहिए, वो हराम है उसका खाना। उसका खाना क्या है? हराम और गुनाह है, हराम है, वो जायज नहीं उसका खाना। समझ में आ रही है बात? अच्छी तरह समझ में आ गई और वाजे कर दूं? हाँ, उसका खाना हराम है। दिल डलवाओ, गुर्दे डलवाओ, मगज डलवाओ, कोई मना नहीं है। पूरे बकरे में एक वही चीज रह गई है क्या? दोस्तों उसका खाना हराम है, हराम। लिहाजा कटाकट वाले से पहले ही कह दे कि भाई साहब वो मत डालिएगा, वो जो खा रहा है तो उससे कुव्वत पैदा हो रही है, सेहत बन रही है। तो दिल का जो मरकज है, दिल जब ये दिल बन जाता है, तो मैं अर्ज कर रहा था कि सारे आलम के जानवरों में भी दिल है, परिंदों में भी दिल है, लेकिन किसी को अहले दिल नहीं कहा जाता। अहले दिल किसको कहते हैं? इसका जवाब सुनिए। मेरे मुर्शिद, मेरे शेख फरमाते हैं, फारसी का शेर है मेरे मुर्शिद का, अहले दिल आकस के हक रा दिल देहत। अहले दिल वो लोग हैं जो अल्लाह को अपना दिल देते हैं, दिल देहत पूरा के दिल रामी देहत, दिल उसी को देते हैं कि जिसने इनको दिल दिया। यानी अपने दिल का ये क्या मतलब है इनका कि दिल को खालिक के दिल पर फिदा करते हैं, दिल के। और दिल को फिदा करने के क्या माने कि जो दिल के तकाजे हैं उन वो तकाजे जो खालिक के दिल की मर्जी के खिलाफ हो उनको वहां इस्तेमाल ना करे बल्कि अल्लाह ताला की रजा और खुशी में इस्तेमाल करना, बस यही दिल का सही मसरफ है। और अगर और हमारा तजुर्बा यह है कि जिन लोगों ने दिल को इन हसीन के चक्करों में फिदा किया तो दुनिया आखरत तो आखरत, उसकी दुनिया भी तबाह हुई, दोनों जहां तबाह है जिसने दिया है इनको दिल, दोनों जहां तबाह है जिसने दिया है इनको दिल। यानी जिन्होंने इन हसीनों के चक्कर में, इस रोमांटिक दुनिया के चक्कर में अपने दिल को लगाया, उसका दिल तबाह बर्बाद हुआ, वल्लाह चैन और सुकून नहीं पा सकता वो। हमारे हजरत मीर साहब का एक मजमून अभी एक छपा है, उस मजमून के अंदर उन्होंने जब नया नया 1970 के जमाने की बात है, 1969 तो जब आना शुरू हुआ, हजरत के आना हाजिरी हुई आना शुरू हुए तो लोगों ने सताना शुरू किया, अरे क्या मुल्ला बन जाओगे। यानी कितनी अजीब बात है, हमारे माशरे का एक अजीब मिजाज है, जब कोई नौजवान दीन में आगे बढ़ता है, दीन के काम में आगे बढ़ता है और दीन के काम में चलता है, दाढ़ी रखी नमाज को जा रहा है, अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा है, नेक लोगों के पास उलमा के पास बैठ रहा है, तो सारा माँ बाप तो माँ बाप खानदान भी उसके दुश्मन बन जाते हैं। अरे भैया ये क्या कर रहे हो, ये किन चक्करों में पड़ गए, ये क्या कर रहे हो, सताते हैं। कितनी अजीब बात है, वही लड़का पहले चड्डिया पहने डांस करे, रातों को देर से घर आए, माँ बाप के साथ बदतमीजी करे, कोई उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन जब वो माँ बाप के साथ अपना रवैया नरमी का इख्तियार करता है, खिदमत कर रहा है, क्यों, क्योंकि सिखाया जाता है कि बेटा अपने माँ बाप की खिदमत करो, ये दीन है ये। तो अब वो जब नरमी करता है, नतीजा ये कि सब उसके साथ बर्ताव कैसा करते हैं, और पहले उसे कोई फिल्में देखे, आवारागर्दी करे, जहां चाहे जाए, कोई नहीं पूछता, कितना अजीब मिजाज है। दिल को खालिक के दिल पर फिदा करना, ये हकीकी दिल का मसरफ है। ख्वाजा साहब ने यही फरमाया, नक्शे बुता मिटाया, दिखाया जमालिया, आंखों को आंखें और दिल को मेरे दिल बना दिया, यानी दिल को अल्लाह के लिए खाली कर दिया। लदा ख्वाजा सिद्ध हसन मसूर रहमतुल्लाह ने ये शेर भी फरमाया, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। हा क्या अजीब शेर है, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, यानी जायज तो नाजायज तो नाजायज, जायज तमन्नाओं को भी दिल से निकाल दिया अल्लाह के लिए, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। क्योंकि अल्लाह ताला जिस दिल में गैरुल्लाह हो वहां अल्लाह ताला उस दिल में तशरीफ नहीं लाते, तो अल्लाह हमने आपके खातिर से अल्लाह वालों की सोबत से अपने दिल को गैरुल्लाह से खाली कर दिया, अब इस दिल को अपने रहने का ठिकाना फरमा दीजिए, अपने रहने का ठिकाना बना दीजिए। तो मीर साहब ने हजरत से अर्ज किया कि हजरत अब मुझे खानदान वाले सताते हैं और मुझे उन्होंने छोड़ दिया, मुझे कोई पूछता नहीं है। तो हजरत ने उनसे फरमाया, जब ये तो शुक्र अदा करो कि खालिक उसी को अपना बनाता है जो मखलूक की निगाहों में गिर जाता है। उन्होंने कहा कि हजरत मैं मखलूक की निगाहों में गिर गया। तो हजरत ने उनसे फरमाया कि याद रखिए मीर साहब, अल्लाह ताला उसी को अपना बनाता है जो मखलूक की निगाहों से गिरता है, क्योंकि जब तक मखलूक की निगाहों में रहेगा मखलूक उसको मखलूक के चक्कर में फंसा रहेगा। फरमाया तो शुक्र अदा करो, ये तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला की तरफ से ये खुद ही इंतजाम हुआ कि आप उनकी निगाहों में गिर गए, लेकिन अब आप ये काम करें कि आप भी मखलूक को अपनी निगाहों से गिरा दीजिए। और लेकिन फरमाया कि मखलूक को निगाह से गिराने के क्या मतलब है, मखलूक को निगाह से गिराने का मतलब यह है मखलूक को हकीर समझना जायज नहीं है। जैसे किसी आदमी की दाढ़ी ना हो उसको यह मसला तो बताया जाएगा कि एक मुट्ठी दाढ़ी का रखना वाजिब है, अपनी मुट्ठी से नापे, शलवार का टखनों से ऊपर रखना जरूरी है, लेकिन जिस आदमी की शलवार टखने से नीचे हो या उसकी दाढ़ी ना हो उसको हकीर समझना हराम है। कैसा अजीब है, यानी कितना, यानी एक आदमी गुनाह मरीज भी है, गुनाह में मुबतला भी है,
गुनाह से नफरत भी जरूरी है, लेकिन आसी यानी गुनाहगार से नफरत हराम है। अब आप बताइए कितना मुश्किल मसला हो गया, गुनाह से नफरत भी करनी है लेकिन गुनाहगार से नफरत नहीं करनी। इज्तिमाई ज़िद्दैन हुआ कि नहीं हुआ, कि गुनाह से नफरत भी करो लेकिन जो आदमी इस गुनाह में मुब्तला है उससे नफरत करना दुरुस्त नहीं है। और ये चीज पैदा होती है सोहबतों से, अल्लाह वालों की सोहबत से ये चीज मिलती है। इज्तिमाई ज़िद्दैन कि गुनाह से नफरत भी हो और गुनाहगार से नफरत भी ना हो, ये चीज ये अखलाकियात बगैर सोहबतों के हासिल नहीं होते, बगैर अल्लाह वालों की जूती उठाई ये बात मिलती नहीं है। तो हजरत ने क्या फरमाया कि मखलूक को दिल से गिराने के माने ये है कि उनको हकीर न समझे लेकिन उनसे तवक्कुआत भी वाबस्ता न करे कि जी फला मेरे उस वक्त काम आ जाएगा, चलो कुछ सेठ से दोस्ती कर लें तो कभी कर्जा लेने में आसानी हो जाएगी, चलो किसी पार्टी वालों से दोस्ती कर लें तो जरा उनको कुछ डराने में आसानी हो जाएगी। हमारा ये है ना हर एक से, बल्कि बाजों का मिजाज होता है हर पार्टी से दोस्ती रखो। अजीब क्या अजीब आलम है, यानी सबसे दोस्ती करो और जिसके कब्जे में सब कुछ है उसको भूल जाओ। ये गोया कि ये हुआ कि मखलूक को तो हमने निगाहों में बसाया और खालिक को हटा दिया। होना ये चाहिए कि खालिक को निगाहों में, खालिक के सिवा दिल में कोई ना हो, क्योंकि मखलूक भी खालिक के हुक्म के बगैर बेबस है। कितना ही अच्छा दोस्त हो, कितना अच्छा दोस्त हो, वक्त पर क्या आलम होता है। और हां दोस्ती की भी बात सुन लीजिए, हम लोग हर आदमी को अपना दोस्त कहते हैं तो याद रखना हर आदमी हमारा दोस्त नहीं होता, मुलाकात करना और है। लेकिन जिसको दोस्त कहते हैं, दोस्त के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि उससे रोजाना मुलाकात हो, यह भी शराइत में से नहीं है। पहले एक वाकया सुन लीजिए, हस्बे हाल भी है, आजकल के जमाने के एतबार से भी है, खुसूसन जवानी का जो जमाना होता है ना उस वक्त यह आलम ज्यादा होता है। नौजवान था, वही यारियां लगाना, रातों को 12-12 1-1 बजे तक यारों के साथ गप्पे लग रही हैं, गप एंड शप, कढ़ाइयां खाने जा रहे हैं शिनवारी की और फलां जगह और फलां जगह की आइसक्रीम फलां जगह और गप्पे और वो, और खुश होते हैं ना कि यहां तक कि अगर बाप मना करे कि तुमने किससे यारियां लगाई हुई हैं तो लड़ता है बाप से, ऐसा ही होता है ना, कोई उसको मना करे भाई ये तुमने किनसे यारियां लगाई हुई है तो लड़ते हैं। तो एक बाप, देखो बेटा बातें मत करना, हाँ आगे आगे बैठ जाओ यार, अभी तो जवानी का जमाना है, अभी से बुढ़े हो गए तो क्या आकर बैठ रहे। तो बाप उसको मना करता था बच्चों को कि बेटा तुम इन लड़कों के साथ, ये तो ऐसे ही आवारा, इनके साथ मत घूमो, यानी अब्बा मेरे दोस्त है। तो बाप समझाता था कि बेटा दोस्त वो है जो वक्त पर काम आए। वो कहता था नहीं अब्बा ये मेरे जान निसार दोस्त है, वफादार दोस्त है। बाप समझाता था, वो बाप की बात ना मानता था। तो एक दिन बाप ने रात 12 बजे बेटा आया घर में, तो बेटे से कहा कि बेटा मैं बहुत परेशान हूं। बेटे ने कहा अब्बा क्या परेशानी। कहा इस वक्त मुझे फौरन 2,00,000 रुपए की जरूरत है, फौरन मेरी ऐसी मजबूरी है कि बस, तो तुम इंतजाम कर सकते हो। उसने कहा अब्बा कोई मसला नहीं है, ये जो मेरे दोस्त है ना इन्होंने कहा था 24 घंटे में किसी वक्त भी जान हाजिर है। अब कहा इसे तो अच्छा ये तो मसला ही कोई नहीं। कहा चलो बेटा अभी ला दो। उसने कहा अभी अभी जाता हूं, मोटरसाइकिल निकाली भिम भिम भिम। चलो भाई एक क्या पहुंच गए। अरे कैसे आना हुआ। कहा कि यार बहुत जरूरी काम है। खैरियत फौरन मेरे अब्बा को 2,00,000 रुपए की जरूरत है, जान हाजिर है तेरे, बिल्कुल मसला ही कोई नहीं है, लेकिन मेरे पैसे एक पार्टी के पास फंसे हुए, जान हाजिर है, बोल जान चाहिए। ये डायलॉग होते हैं ना यारों के डायलॉग्स, जान हाजिर है तेरे लिए, लेकिन पार्टी के बाद फंसे फंसे रहे, बस सुबह का इंतजार कर ले। कहा नहीं, इसी वक्त चाहिए, बस सुबह का। कहा अच्छा, फिर तो मैं माजूर हूं, तुम तो मेरी मजबूरी। हाँ यार, वाकई तुम्हारी मजबूरी। दूसरे के पास गया, अरे अभी 8 बजे एक वो जो दोस्त है उसको अभी मैंने दिया। अलगरत अपने जितने दोस्तों के पास गया, साहब ने आना कानी करके, अब घंटे दो घंटे मगजमारी करके घर पर आया तो लटकता हुआ चेहरा देखकर ही बाप समझ गया। अब चेहरा लटका हुआ तो पूछा क्या हुआ, कि अब्बा ये। अच्छा, बाप खामोश हो गया। उसने कहा चल बेटा मेरे साथ चल। बाप को लेकर चले, चलते रहे चलते दूर गए, दूर दराज इलाके में। रात के 4 बज रहे, सुबह के अंधेरा घुप, दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलने में थोड़ी देर लगी। ये वाकया मेरे शेख और मुर्शिद ने सुनाया, देखो कितना समझाया। दरवाजा खुलने में थोड़ी देर लगी, थोड़ी देर में देखा कि एक आदमी अंदर से बाहर निकला, उसके हाथ में तलवार, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुछ पोटली बनी हुई, और उसको महसूस हुआ कि पीछे कोई औरत भी खड़ी थी। तो अब जो दरवाजा खुला उस सामने, उसने आपस में, अरे तुम कहां, मैं सब रात को कैसे, खैरियत कैसे आना हुआ। मेजबान ने, साहिब मकान ने पूछा। उसने कहा वो तो मैं तुम्हें बाद में जवाब दूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में ये कुछ थैला सा है, और महसूस होता है कि तुम्हारी घरवाली भी पीछे खड़ी हुई है, क्या ये क्या राज है। तो साहिब मकान ने कहा कि बात यह है कि इस वक्त रात में 3 किस्म के लोग आ सकते हैं। या तो दुश्मन होगा, या अगर दुश्मन होगा तो उसका काम इस तलवार से तमाम कर दूंगा, या ऐसा मेरा जरूरतमंद दोस्त होगा कि जो दिन के उजाले में मुझसे मांगने नहीं आ सकेगा, शर्म की वजह से, अपनी सफेद पोशी की वजह से। लादा वो इस सवाल के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करेगा ताकि मेरी इज्जत का भरम रह जाए। तो मेरे ये जो दूसरे हाथ में थैला है, दर हकीकत इसमें पैसे हैं। कि अगर वो मेरे दोस्त जो जरूरतमंद होगा वो मुझसे पैसे मांगेगा तो मैं उसके वो हवाले कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो सफेद पोश है, जिनके उजाले में मांगने आ नहीं सकता, और रात के अंधेरे में इसलिए मांगने आ रहा है कि मेरी जरूरत का किसी को पता ना चले। और पूछा वो तीसरी औरत क्या है, कहा यार रात में आने वाला तीसरा वो आदमी होगा कि जिसके घर में विलादत मुतवक्के होगी, और वो इसलिए परेशान होगा। लादा मेरी बीवी हाजिर है, वो इस काम की माहिर है विलादत करवाने में, अब तुम बताओ तुम्हें क्या जरूरत है। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन तीनों में से किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस मैं अपने बच्चे को एक सबक सिखाना चाहता था कि बेटा दोस्ती इसको कहते हैं, ये जो तुम रोजाना जिनके साथ गप्पे लगा रहे हो, जिनके साथ हेलो हाय हो रही है, पार्टी वालों से यारियां लगाई जा रही हैं और साथ बैठकर गप्पे और खाने और तबसरे लगाए जा रहे हैं, ये हकीकत में दोस्त नहीं है। क्योंकि हमारा एक मिजाज ये है कि जो आदमी हमको नसीहत करता हो हम उसे अपना दोस्त है, उसको दुश्मन समझते हैं। जैसे कोई आदमी अगर हम ये कहे कि भाई तुम दाढ़ी रखो, तुम अल्लाह की फरमाबरदारी करो, शलवार टखनों से ऊपर करो, गुनाह को छोड़ो, हम उसे अपना दुश्मन समझते हैं। और ये हमारी बहुत बड़ी हमाकत है, क्योंकि बजाय मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि अगर हम दाढ़ी रखते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, और उस मजाक उड़ाने से हमारे दिल को तकलीफ होगी। हम अपनी शलवार को टखने से ऊपर कर रहे तो लोग हमें ताना देंगे, अरे मियां इससे तो बेहतर था तुम चड्डी पहन लेते। और अगर हम नजरे बचाते हैं हमारा दिल टूटता है। अगर हम शादी ब्याह अपनी फौजी को शरीयत और सुन्नत के मुआफिक करते हैं तो सारा बिरादरी सारा खानदान हमारा मजाक उड़ा रहे, बल्कि हमारा बायकॉट करेगा। ये तकालीफ तो है, इस बात का मुझे एहसास है, लेकिन मेरे दोस्तों सोचने की बात यह है कि हम वो जो दाढ़ी रख रहे हैं, वो जो हम शलवार अपनी टखनों से ऊपर कर रहे हैं, और हराम से बचने के खातिर से चटनी रोटी पर राजी हो जाते हैं, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की खातिर से खानदान बिरादरी वाले हमें काट देते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है, दुनिया के एतबार से तो चलो होगा, लेकिन मैं मानता नहीं हूं इसको, दुनिया के एतबार से कोई नुकसान ऐसे शख्स का नहीं होता। क्यों? क्योंकि मखलूक इसके रिस्क को नहीं रोक सकती, मखलूक इसकी खुशियों को नहीं रोक सकती, मखलूक किसी को गम नहीं दे सकती। क्यों? अल्लाह ताला की तरफ से वह होना है। हाँ, इतना जरूर होगा कि ये शख्स आखिरत के अंदर कामयाब जाएगा। तकलीफ तो है ना कि साहब ये हमें क्यों कहा जाए। लगा हम ऐसे कहने वाले को अपना दुश्मन समझते हैं और वो आरती जैसे हमारा मिजाज है वाह 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 हो तो हम खुश होते हैं, अरे भाई बड़ी तारीफें हो रही है हमें, है ना, रागले रागले पखैर रागले, जीतेगा भाई जीतेगा, मटके वाला जीतेगा, ओ हूटिंग हो रही है और शोर हो रही, बड़े खुश है भाई हमारी तो क्या बात है। लेकिन मेरे दोस्तों हकीकत क्या है, अब देखो ना, एक आदमी हमारा एक मिजाज है, हज करके कोई हाजी आता है ना हम फूलों के हार लेकर जाते हैं, बल्कि हाजी साहब के लेकर हार ना लेकर जाओ वो भी नाराज होते हैं। वो हमारे एक दोस्त है, तो एक जगह निकाह था तो निकाह में उसको नोटों वाला हार धुलाने पहना हुआ था। वो हमारा दोस्त जरा मिजाहिया किस्म का है, वो नोटों वाला हार पांच पांच के नोट थे और वो पांच पांच के नोट का पूरा हार था, तो उसने जेब से 100 रुपया निकाला, उसको धुला से कह रहा है खुला मिल जाएगा। एक साहब ने मुझे फोन किया कि हमारा हाजी आ रहा है एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट से फोन किया, कहा कि इसके लिए हार लेकर जाए कि नहीं। मैंने एक सवाल पूछा कि हारने का वक्त है या जीतने का वक्त है, खामोश हो गए, समझदार थे समझ गए। लेकिन अब आलम क्या है कि हाजी आने वाला उमरा करने वाला तो बड़ा खुश है, वो क्या खुश है कि जी मुझे नोटों के हार डाले जा रहे हैं, और उसकी तो टोरी अलग होती है कि पूरे एयरपोर्ट पर सब लोग, पूरा जत्था का जत्था आया उसको बड़ी मुबारकबादे पेश कर रहा है, तो उसी से इंसान का दिमाग खराब होता है। मारूवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जानवर फरमा शब्द अजनाव नोश, जानवर मोटा होता है खा खा के, और आदमी फरमा शब्द अजराहे गोश, और आदमी मोटा होता है अपने कान के रस्ते से। अरे जनाब आपका तो क्या कहना, अरे आप तो बड़े वीआईपी आदमी है, अरे जनाब आपकी तो क्या शान है, आपका इल्म आपकी तकरीर और आपके अखलाक, ये चीजें इंसान का दिमाग खराब करती है। इसलिए तो सोहबत शेख चाहिए, जहां पर तबीयत में एतदाल रहता है। वो यही कहेगा कि इनकी तारीफ से, देखो ना एक आदमी भूखा है, एक आदमी की रोटी नहीं है, अब लोग आकर उसकी तारीफ करें जनाब वो क्या पेट तो नहीं भर जाएगा उससे, जरूरत है उस एतदाल की। और सोचने की बात यह है कि आखिरत में हमारे क्या चीज काम आने वाली है। तो अब हाजी को जाए, अब हाजी जिसको हार ना पहनाए वो भी नाराज होता है कि मुझे हार क्यों नहीं पहनाए। अब हाजी अपनी तरफ से खुश हो रहा है, या उमरा करने वाला अपनी तरफ से खुश है, अरे साहब लोग मुझे मुबारकबाद देने आ रहे हैं, सब कह रहे दुआ करो उमरे वाले से हाजी साहब से। लेकिन सोचने की बात यह है कि पता नहीं अल्लाह क्या कबूल भी है कि नहीं है, सोचने की बात है। ये तो एक डरने का मकाम है। सहाबा की क्या शान थी कि खुद अल्लाह ताला गवाही देते हैं, इन्ना रब्बका यालमु अन्नका तकूमु अदना, पूरी आयत सूरह मुज़म्मिल के अंदर जिक्र है कि अल्लाह ताला आपके रब खूब जानने वाले हैं कि आधी रात को उठना, सुलुस रात में उठना, इबादत करना, यहां तक कि सहाबा की जमात भी आपके साथ इबादत करती है, यानी अल्लाह ताला उनकी इबादत पर गवाही कुरान पाक में दे रहे हैं। सोचने की बात है कैसे इबादत गुजार होंगे कि जिनकी इबादत की गवाही अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में दे रहे हैं। लेकिन उन्हें सहाबा की शान भी बयान कर दी, रात भर इबादत में गुजारी और सुबह यह आलम हो रहा है वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, जब सुबह होती है उनकी सुबह कैसी होती है, इस्तिगफार करते हुए कि अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए, हम आपकी अज़मत का हक अदा न कर सके। तो पता ही चला कि इबादत के बाद आजजी होनी चाहिए, अल्लाह ताला से मगफरत मांगनी चाहिए, ना कि ये क्या कारण है। अब हाजी साहब की दावत हो रही है, हाजी साहब की दावत, उन्हें गोश्त और रोटियां खिलाई जा रही हैं, लेकिन आलम यह है कि अजान का वक्त है, हाजी साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा रहे। अब आप बताइए हाजी का क्या हाल है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या फरमाया मेरे मुर्शिद मेरे शेख ने, मखलूक से रابطہ खत्म, खालिक से रابطہ हो। यानी मुराद क्या है कि मखलूक हमारे काम नहीं आ सकती, अल्लाह सिर्फ हमारे काम आने वाला है, और हमारा हकीकी दोस्त दर हकीकत वो अल्लाह ही है। देखो ना कितनी अजीब बात है कि हम, सबसे पहले तो मैं अपनी बात करता हूं ना, कि गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन उस पर उसके बावजूद अल्लाह ताला की तरफ से सत्तारी है, यानी पर्दे उयूब पर पर्दा है, गुनाहों पर पर्दा है, और फिर कितनी अनायतें मेहरबानियां हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम गुनाह करते हमारी रोटी बंद हो जाती, लेकिन हमारे गुनाह हमारी नाफरमानी के बावजूद अल्लाह ताला ने हमारा रिस्क बदली फरमाया। कितनी अजीब बात, रिस्क है सब कुछ है, अच्छे भले हैं,
کتنا اللہ کا کرم ہے میرے دوست.
کیا یہ خالق کی مہربانی؟ کیوں؟ کیونکہ حقیقی تربیت فرمانے والا اور محبت کرنے والے وہ ہیں. یہ مخلوق مخلوق وہ اس کی حق اتنا ادا کرنا ہے جس سے خالق خوش ہو. ایسا نہ ہو کہ مخلوق کی خاطر ہم اپنی جماعت کی نمازیں بھی چھوڑ دیں, کہ کوئی مہمان آیا وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی خاطر ہم نے بھی چھوڑ دی. یہ مخلوق کا حق نہیں ہے. خالق کا حق مارنا یہ درست نہیں ہے کہ جی اگر ہم پردہ کریں گے ہماری رشتے دار نہیں ناراض ہوں گی. تو بے شک ناراض ہوں. اس لیے میرے پیارے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ اگر مخلوق نے تم کو اپنے دل سے نکال دیا تو تم بھی ان کو اپنے دل سے نکال دو. فرمایا یہ تو آسان کام ہو گیا, جس کو نکالنے میں محنت کرنی پڑتی وہ تو خود ہی کام ہو گیا. گویا کہ فیلڈ تیار ہے, اب اللہ کی محبت کے بیج ڈال دو. جیسے آگ لگتی ہے نا, بعض جگہ جنگل میں آگ لگتی ہے, آگ لگنے سے جنگل کو کاٹنا مشکل تھا, وہاں کھیتی کچھ اور کام کرنا ہے, کچھ تعمیرات کرنی ہے, جنگل کو آگ لگانا مشکل کام تھا, جنگل کو کاٹنا مشکل تھا, خود ہی آگ لگی خود ہی اکھڑ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ زمین بھی نرم ہو گئی, اب تو کام آسان ہو گیا. جیسے ہمارے یہاں سیلاب آیا گزشتہ برس, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, لیکن سیلاب کے آنے کا کیا فائدہ ہوا یہ بھی دیکھیے. نقصان بھی ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عجیب انتظام ہوا, سیلاب سے جو دریا کی جو مٹی تھی وہ زمینوں میں آ گئی. اور زمینداری کا قاعدہ یہ ہے کاشتکاری کا کہ کاشت کرنے کے بعد جب فصل کاٹ دی جائے تو اگلی فصل نہیں لگائی جاتی. یہ اصلی زمینداری ہے. جیسے آم کھانے کا اصول ہے, آم کھانے کا اصول یہ ہے کہ آم کو پہلے پانی میں ڈال کے اس کی گرمی کو دور کیا جاتا ہے. یہ آم کھانے کا اصول ہے. ہماری والدہ ایسے ہی کرتی تھی اور اب بھی یہی سمجھاتی ہیں. الحمدللہ میری والدہ صاحبہ حیات ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اور صحت دے, ہمارے بڑوں کو, آپ لوگ بھی دعا کریں. تو یہ سمجھے کیا, آم کو پہلے پانی میں ڈال کے اس کی گرمی کو دور کرتے ہیں. اور پھر والدہ کا عجیب معمول کہ اس کے بعد ہمیشہ کچی لسی پلاتی تھی, یعنی دودھ میں پانی. کیوں صاحب؟ یاد ہے نا جو بڑے عمر کے لوگ ہیں وہ تو اس وقت خوب ہوئے تھے. آج ہم آم کو فریج میں ٹھنڈا تو کر دیتے ہیں لیکن اس سے وہ جو آم کی گرمی ہے جو مضر ہے وہ دور نہیں ہوتی. تو پتہ یہ چلا کہ ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے. جب اصول سے کام کرے, جب اصول سے کام کرے تو اس کام کا فائدہ ملتا ہے. اور عالم یہ ہے کہ آج ہمیں ہر کام کر کے نقصان ملتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اصول سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق عطا فرمائے. تو میں بتا رہا تھا کہ سیلاب آیا تو وہ مٹی آ گئی, کاشت کرنے کے بعد فصل اور نہیں اگائی جاتی بلکہ اس کو چھوڑتے ہیں, یا ایسی ہلکی فصل لگائی جاتی ہے, دھنیا پودینا وغیرہ, جو زمین کی طاقت کو نہ کھینچے. اور ہمارے کسان چونکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جلدی پیسہ چاہیے, ایک فصل اتاری دوسری لگا دی, ایک اتاری دوسری لگا دی, اور مٹی ڈلواؤ تو پیسہ لگتا ہے, اس لیے وہ بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انتظام ہوا, مٹی آ گئی تو زمین کی قوت بڑھ گئی. لہذا ماشاء اللہ اس کے بعد جو گندم آئی وہ عمدہ آئی, فصل میں جان پڑ گئی. یہ ہوتا ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا, کہ غم بھی آتے ہیں تو میرے دوستو اگر جو غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں تو اس غم میں بھی نقصان نہیں ہے. جیسے حسین سے نظر بچاتے دل ٹوٹتا ہے, لیکن یہی ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس دل میں آ جاتی ہے. اور جب انسان کو غم آتا ہے, غم تو ہمارے ہاں برا سمجھا جاتا ہے, غم ہمارے ہاں برا سمجھا جاتا ہے, لیکن غم جتنا برا ہم سمجھتے ہیں اتنا برا نہیں ہے. کیوں؟ اس غم کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے رونے کا مزہ ہے, اس غم کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کا مزہ ہے, اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو سجدہ کرنے کا مزہ ہے, میرے دوستو خوشی میں وہ مزہ نہیں آتا. اور اللہ کے حضور میں رونے کی بھی ایک لذت ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور میں رونا اس میں بھی ایک لذت ہے. اب وہ لذت تو اٹھا کر دیکھنے کی چیز ہے. جیسے کسی آدمی نے آم نہ کھایا ہو, جس نے آم نہ کھایا اس کو کیسے بتائیں گے آم کیسا لذیذ ہوتا ہے؟ یا جس آدمی نے کھڑا گوشہ نہ کھایا, وزیرستان والوں سے دوستی کی کھڑا گوشہ نہیں کھایا, تو کیسے پتا چلے گا کہ کیا لذت ہوتی ہے؟ یہ چکھنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنا قرب عطا فرمائے, اور 100% ہر گناہ سے چھٹکارا عطا فرما دے, اور ہماری جانوں کو 100% صحت جسمانی بھی عطا فرما دے, صحت روحانی بھی عطا فرما دے. دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ
اپنے کرم سے ان گزارشات کو قبول فرما دیجیے. ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما دیجیے. اپنی عنایت و مہربانی ہم سب پر فرما دیجیے. یا اللہ ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے. ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے. اے کریم مالک ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے شہر میں جو آگ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، اس کو قتل کر رہا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنا قرب عطا فرما اور ایک دوسرے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے. یا اللہ بدامنی سے ہمارے شہن کو بچا، امن عطا فرما، سکون عطا فرما، اہل شر کے شر کو دفن فرما دیجیے. اور یا اللہ فتنہ کرنے والوں کے فتنے کو دفن فرما دیجیے. ہماری ہر مسلمان کی جان کو، مال کو، آبرو کو حفاظت نصیب فرما دیجیے. ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالی ہمارے تجارت کی حفاظت فرما، ہمارے زراعت کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ایمان میں روز بروز ترقی عطا فرما، دین میں روز بروز ترقی عطا فرما دیجیے، ہر ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمیں اپنی رضا اور خوشی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجیے. ہمارے شیخ کے خادم حضرت میر صاحب ہیں جو حضرت کی کتابوں کو لکھتے ہیں، شدید بیمار ہیں، ان کا انجیو پلاسٹی دل کی ایک تمام رگیں بند ہیں، ایک رگ صرف 5% چل رہی ہے، ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیاب فرما دیجیے، صحت عطا فرما دیجیے، زندگی عطا فرما دیجیے. اور اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام حاجات کو، یا اللہ اپنے کرم سے ان کی حاجت روائی فرما دیجیے، اور ہم سب کو 100% اپنی رضا اور خوشی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما.